वाणी श्री हजूर स्वामी जी महाराज गुरु और नाम भक्ति वचन 19वां शब्द 18वां ताम अपने चलो भाई ताम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना पराए देश क्यों रहना
कल मैं श्री गुरु नानक देव जी महाराज दे घर दी बाणी लई सी अज मैं श्री हजूर स्वामी जी महाराज दी बाणी लै रहा हाँ मुख्तम महात्मा दे बाणी लैण तो मेरा केवल इतना ही भाव है कि हर एक महात्मा दा इको ही संदेश है इको ही उपदेश है हर एक महात्मा सानू परमात्मा दे भगती करन दा इको ही तरीका और साधन समझाउंदा है। स्वामी जी महाराज उपदेश करते हैं कि असी सब दुनिया के जीव सुख और शांति हासिल करना चाहते हाँ लेकिन सुख और शांति दे प्राप्ति दे वास्ते आम तौर पर साडा ख्याल किस तरफ जाता है ऐस रचना दियाँ शक्लों की तरफ जाता है रचना दे पदार्थों की तरफ जाता है लेकिन आप फरमाते हैं इन्हां चों नाज तिकर कदे किसी नूं हमेशा वास्ते सुख और शांति प्राप्त हुई है ना कदे किसी हालत अंदर हो ही सकती है क्योंकि जिन्ना शक्लां और पदार्थां चों असी सुख ढूंढण की कोशिश करते हाँ ये सब ने नाश हो जाना है सब ने फराह हो जाना है और इन्हां दी खुशी और शांति हमेशा टेंपरेरी और आरजी हो सकती है जो भी थोड़े बहुत सुख नज़र आते हैं अरसा पा के सब दुखां अंदर तब्दील होने शुरू हो जाते हैं ये जो भी परमात्मा ने सानू दातां दित्तियां होईयां हन जिन्हां नूं असी सुख दा कारण समझी बैठे हाँ नाल ही मन विच पै और डर बैठ जाता है कि ये साढ़े किते हथों ना निकल जाण ये परमात्मा खुशियां साथों किते वापस ना लै लवे सो जिस चीज़ का जानदा 24 घंटे साडे मन विच पै बैठा होया है डर बैठा होया है वो खुशी ही आहिस्ता आहिस्ता दुखां अंदर तब्दील हो जाती है शादी हुंदी है मन विच कितनी खुशी महसूस हुंदी है कितने पुन दान करते हाँ नाच गाने करते हाँ लेकिन नाल ही मन विच पै और डर बैठ जाता है साथी बदकार ना हो जावे जवारिया ना हो जावे शराबी ना हो जावे आंढ गुआंढ नाल लड़ना ना शुरू कर देवे या फजूल खर्च करना ना शुरू कर देवे बीमार ना हो जावे परमात्मा किते वापस ना बुला लवे ये जड़ा मन विच डर बैठ जाता है पै बैठ जाता है वो साड़ी सारी खुशी नूं दोजख बना दिंदा है फिर साढ़े बाल बच्चे पैदा होंदे हैं जरूर मन विच खुशी महसूस होंदी है नाल ही मन विच पै और डर बैठ जाता है इन्हां दी परवरिश किस तरह करांगे इन्हां दे खर्चां वास्ते इतना पैसा कित्थों लियावांगे किहड़ियां स्कूलां विच दाखला ढूंढना पवेगा किते पैड़ियां सोहतां विच ना पै जा चोर डाकू ना बन जाण शराबी ना बन जाण आवारा गर्द ना बन जा नलायक ना हो जा सानू छड़ के ना किते चले जान किसी लड़के का एक्सीडेंट ना हो जावे या कोई बीमार ना हो जावे वो औलाद ही आहिस्ता आहिस्ता साडे वास्ते दुख का करना बन दुख का कारण बन जाती है फिर असी हकूमत दे नशे चो सुख ढूंढण की कोशिश करते हाँ जरूर जदों लोग साडे गल्लां विच फुल्लां दे हार पाउंदे हन साडे जलूस कढ़दे हन हाथियां ते चढ़ाउंदे हन साडी वाहवा वाहवा करदे हन साडा मन फुल्लिया नहीं समाउंदा लेकिन जदों बड़े बड़े लीडरां दियां असीं जिंदगियां पढ़दे हाँ साडे मन विच भी पै और डर बैठ जांदा है इक ते मेरी हालत ना हो जावे मैनू ना किते फायरिंग स्क्वाड अगे खड़ा कर दिता जावे मेरी किते इनक्वायरी ना शुरू हो जावे मेरी मिट्टी अखबारां विच ना पलीत होनी शुरू हो जावे रातों रात दूसरी पार्टी आ के चुक के मैनू जेलखानियां विच ना पा देवे वो जिहड़ा मन विच पै और डर बैठा होया है ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਧਨ ਦੌਲਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਕਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੈ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੇਲ ਟੈਕਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੇਟ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਨਾ ਮੁੱਕਰ ਜਾਣ, ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈ ਔਰ ਡਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਪਟਿਕ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਰੁਪਇਆ ਪੈਸਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਕਬਾਬਾਂ ਦੀਆਂ ਲਸਤਾਂ 'ਚੋਂ ਸੁੱਖ ਢੂੰਡਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਮ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਚੱਕੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਖਰਚ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਔਰ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ? ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਜੋ ਮਨ ਜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਕਾ ਤਾਮ, ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਲਗੋ ਅਬ ਤੁਮ ਸਤਨਾ। ਇਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੋਣ, ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਵਾਸ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁੱਖ ਹੀ ਭੁਗਤਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਦੇ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ 10 ਦਿਨ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਹ ਪੁੰਨ ਔਰ ਪਾਪ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਪੁੰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਪਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੰਨ ਹਨ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੁਖੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਬੋਝਾ ਕਮ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹ ਪਰਪਸ ਹੋਵੇ, ਮਕਸਦ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ, ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਸਟਰੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਕਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਕਿਸ ਚੋਟੀ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਬੁੱਧਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਈਸਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਹਨ, ਇਤਨੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆਏ ਹਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਆਏ ਹਨ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਤੀਕਰ ਦੁਨੀਆ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਉਮੀਦ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨਗਰੀ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਆਪਾਂ ਕਿਤਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅਗਰ ਹਿੰਮਤ ਕਰਕੇ ਪੈਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੂਟ ਪਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਂਟੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ, ਮਸਲੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਹੱਲ ਹੋਏ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦਾ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਔਰ ਸਾਧਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਸੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਚੜ੍ਹ ਕਰ ਲਗੋ ਅਬ ਸਤਨਾਮ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਸਤਨਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਜਿਤਨਾ ਚਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਘਰ ਜਾਤਾ ਆਪਣਾ ਸੇ ਸੁਖੀਏ ਪਾਈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣਾ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁੱਖ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਸੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲਿਵ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ एक छोटा जिहा बच्चा अपने पिता की उंगली पकड़ के मेले अंदर जाता है, उसनों नुमाइश अंदर हर चीज़ बहुत ही खूबसूरत मालूम दिंदी है। किसी जगह बच्चियां दे खिलौने पए हुए हैं, किसी जगह बिजलियां चमकदियां और बुझदियां हैं, किसी जगह मिठाई दियां दुकानां लगियां हुई हैं। वो बच्चा सोचता है कि शायद खुशी उसनों बाजार के साजो समान चो आ रही है, लेकिन अगर गलती दे नाल वो पिता की उंगली छट बैठता है, वो बाजार का सारा साजो समान उस ही जगह मौजूद हुंदा है। फिर बच्चा महसूस करता है कि इस नुमाइश अंदरों वो खुशी उतना अरसा हासिल कर सकता सी जितना अरसा उसने पिता की उंगली पकड़ी हुई सी। साडा पिता कौन है? सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है। सो जितना चिर साड़ी आत्मा मालक की भगती मालक के प्यार विच लगी हुई है, असी सुख और शांति हासिल कर सकते हाँ। अगर असी परमात्मा नूं भुल जाते हाँ, सारी दुनिया साढ़े वास्ते दुख रूप होकर खड़ी हो जाती है। तुसी विचार करके देखो, जिन्हां नूं दुनिया अंदर परमात्मा ने हर एक नियामत दिती होई है, हर एक दुनिया की दात बख्शी हुई है, सेहत भी अच्छी दिती है, जिंदगी का साथी भी अच्छा दिता है, इज्जत भी दिती है, तन दौलत भी दिती है, अगर कि मालिक ने अपने तरफों कोई कमी नहीं रखी, फिर भी कदे इकल्ले बैठ के देखो मन विच खुशी नहीं आउंदी, शांति नहीं आउंदी, ये भी पता नहीं लगता कमी किस चीज़ की है। ये आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ। जितना चिर इसनों असी अपने असल की तरफ नहीं जान देंगे, ये अंदर सुख किस तरह आ सकता है, ये अंदर शांति किस तरह आ सकती है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम अदा। सब दुनिया के जीव आपो अपनी जगह दुखा और मुसीबतों नाल परे पीते बैठे हैं। असली सुख और शांति उन्ना ही गुरमुखानू है जिन्होंने मालिक के भगती का आसरा लिया होया है, मालिक के प्यार का आसरा लिया होया है। बाबा फरीद कहिंदे, मैं जाना दुख मुझ को दुख सवाया जग, उपर चढ़कर देखिया कर कर इहो अख। आप कहिंदे, मैं तो समझदा सी मैनू ही दुख है, लेकिन जदों उपरियां मंजिलों में जाके मैं देखिया, दुनिया तो सारी खाशां और तिश्नां की अग में सड़न लगी हुई है। इसे वास्ते सहजो बाई ने कहा सी, धनवंते दुखिए सभी निर्धन दुख का रूप। जिन्हों को बहुत ज़्यादा धन दौलत है, बहुत ज़्यादा जायदादा हैं, वो तो सारे ही बेचारे दुखी हैं, शायद टीकियां के आधार पर ही सौंदे हैं, गोलियां के आधार पर ही सौंदे हैं। जिन्हों को खाण पीण नूं ही कुछ नहीं, पेट भर के भी रात नहीं सौ सकते, उन्हां गरीबां ने तो दुखी होना ही है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे, बड़े बड़े जो दिखे लोग तिनको व्यापे चिंता रुख। जिहड़े बहुत ज़्यादा राजे महाराजे सेठ शाहूकार तुहानू नज़र आउंदे हन, उन्हां नूं सब तो वड्डा रोग मानसिक रोग लगा होया है, मैंटल डिप्रैशन का रोग लगा होया है। इस वास्ते स्वामी जी के कहण का मतलब है कि मालिक दे कोलों विछड़ के कोई सुखी कदे हो ही नहीं सकता। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी सानू पेश करदे हन, ताम अपने चलो भाई पराई देश नहीं रहना। अगर तुसी सुख हासिल करना चाहुंदे हो, शांति प्राप्त करना चाहुंदे हो, थानू अपने असली घर वापस जाना चाहिदा है। ये देश थोड़ा देश नहीं है, ये कौम थोड़ी कौम नहीं है, ये मज़हब थोड़ा मज़हब नहीं है। थोड़ा देश सचखंड है, थोड़ी कौम सतनाम है, थोड़ा मज़हब मालिक दा इश्क मालिक दा प्यार है। तुसी तो परदेसियां वांगू इस दुनिया में आके भटकते और तड़फते फिरते हो। अगर कोई प्रदेश विच आदमी चले जाता है जिथे उसका अपना कोई भी ना होवे, तुसी सोचो सुख किस तरह हासिल कर सकता है, शांति किस तरह प्राप्त कर सकता है। सारी रचना साडे वास्ते प्रदेश है। साडा असली देश किहड़ा है? जिथे साडा असल रहिंदा है, जिथे परमात्मा रहिंदा है। सो इस रचना नूं प्रदेश नूं असी घर समझी बैठे हाँ, और जिहड़े पराए हन उन्हां नूं असी अपना समझी बैठे हाँ। इस वास्ते असी इन्हां चों सुख किस तरह हासिल कर सकते हाँ, इन्हां चों शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हाँ। इन्हां नाल लेने देने का संबंध है, इन्हां नाल गलतां का प्यार है। ज्यों ज्यों किसी का हिसाब किताब खत्म होंदा है, सब आपो अपने रस्तियां नूं तुर पैंदे हन। कोई भैण बन के आ गई, कोई माता बन के आ गई, कोई बीवी बन के आ गई, कोई बच्चे बन के आ गए, कोई यार दोस्त बन के आ गए, ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੇਖ ਲਓ, ਕਈ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਵੈ ਦਰਿਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਨਖੇੜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਇਕੱਠੇ ਮਿੰਟਾਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਅੰਦਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਦੂਸਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠੀ, ਫਿਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਸਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮੁਸਾਫ਼ਰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੀਰੋਇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਣਾ ਪਿੱਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਨਾ ਕਦੇ ਬਣੇ ਹਨ, ਨਾ ਕਦੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਤਨਾਮ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਤਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਪਿਛੜ ਕੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮਨ ਦੇ ਤਾਬੇ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਜੋ ਕਰਮ ਕਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ 84 ਦੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਹੈ, ਕਰਮਾਂ ਸੰਜਰਾ ਖੇਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਰਮ ਜੋ ਜੋ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਉਹੀ ਫਿਰ ਭੋਗਣਾ ਭਰਨਾ। ਇੱਥੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਅੱਛਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਮੰਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ, ਮੰਦਾ ਨਤੀਜਾ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਵੋਗੇ। ਨਾ ਅੱਛੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਬੁਰੀਆਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦੀਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸੇਠ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਕੁੰਠਾਂ ਔਰ ਸਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਭੋਗ ਜੂਨੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਟਾਈਮ ਔਰ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਇਸੇ 84 ਦੇ ਜੇਲਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪ ਔਰ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਰਕ ਔਰ 84 ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਰਾਜਾ, ਕਿਆ ਪਰਜਾ, ਕਿਆ ਅਮੀਰ, ਕਿਆ ਔਰਤ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜੀਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁੱਖ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਭੁਗਤਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਜਾਮੇ ਅੰਦਰ ਸੋਚੋ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪੇਡਾਂ ਦਾ ਜਾਮੇ ਲੈ ਲਓ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਲੈ ਲਓ, ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਜਾਮੇ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਟ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਛੁਰੀਆਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗਰਦਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਔਰ ਕੁਹਾੜੀਆਂ ਪਕੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਮੂਲੀ ਸੂਈ ਡਾਕਟਰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੰਬਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਗਰੂਬ ਉਹਨਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਲੂਮਾਂ 'ਤੇ ਕੌਣ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਟੌਪ ਆਫ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸ਼ਰਫਲ ਮਖਲੂਕਾਤ ਸਮਝੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਨਲ ਨਰੈਣੀ ਦੇ ਕਹਿ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਤੰਗ ਆਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਗਾਲਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜੇਲਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ ਸੁਣੋ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਕੌਮਾਂ ਮਸਬਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਝਗੜੇ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਕਿਤਨੀਆਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਤਨੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਬੇਵਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਤਨੇ ਬੱਚੇ ਯਤੀਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਗਰੀ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਭਟਕਦੇ ਔਰ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੁਰਤ ਸੁਣ ਪਾਤਰੀ ਤੇਰਾ ਤਨੀ ਬਸੇ ਆਕਾਸ਼। ਇਹ ਆਤਮਾ ਤੇਰਾ ਪਤੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਅਰਸਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ, ਤੂੰ ਕਦੇ ਸੁਹਾਗਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇਰਾ ਮਰਨ ਜੰਮਣ ਦਿਆਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵਿਛੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਹੈ ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਆ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਹਬ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਔਰ ਪਿਆਰ ਉੱਤੇ ਖੋਲ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਵਰ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਕਵਰ ਚਾੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਔਰ ਉਸ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਈਸਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਖੋਲਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਦਿਓ, ਅੰਦਰ ਇਸ਼ਕ ਹੀ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪਿਆਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਸਭ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਫਰੇਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਜ਼ੇਵਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਮਿਆਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕੀਮਤ ਤਸਵੀਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੀਮਤ ਜ਼ੇਵਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਰੇਮ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਡੱਬੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਮਿਆਨ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਸ਼ਕ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਔਰ ਪਿਆਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਕੌਮ ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬ ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਲਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੌਮ ਸਤਨਾਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇਸ਼ਕ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਧਰੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਚਲੋ ਪਾਈ ਪਰਾਏ ਦੇਸ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ, ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰੋ ਜਾਈ ਪਰਾਏ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਫਸਣਾ।
ਹੁਣ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 84 ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਜੇਲਖਾਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੈ? ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਵਿਸਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। इससे वास्ते स्वामी जी कहते मिले नर दे ये तुमको बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत आए इस जग में जानियो रैन का सपना, दे और गरीब सब झूठा परम में काहे को खपना। ये जड़ा इंसान का जामा है मालिक ने थानू अपने काम काज वास्ते बख्शिया है, इस वास्ते कहते दे विच बैठ के कोई अपने मतलब भी सोचना चाहिए है, दुनिया की ऐशो ऐशो इशरत दुनिया नू हसदे खेलदे देख के कित भुल के ना बैठ जावो कि बड़ी सुख की जगह है, तो रात के सुपन की तरह है। ये देह ने भी नाश हो जाना है, ग्रह ने भी नाश हो जाना है, सब परम है, इसकी कोई असलियत नहीं है। इस वास्ते स्वामी जी कहते मंजिले मकसूद नू अखां अगे रखो, डेस्टिनेशन की खोज करो, रूहानी सफर करो, ताकि थोड़ा देह विच आवण का परपत पूरा हो सके, देह विच आवण का मकसद पूरा हो सके। इस वास्ते समझाते हैं काम करो अपना कि जिस परपज वास्ते थानू मालिक ने भेजा है उस मकसद नू अपने अखां अगे रखो, वो कम करो जिहड़े थानू देह दियां बंधना तो आजाद करते हैं, उन्हां कम्मां विच ना सारे फसे रहो, सारी उम्र फसे रहो जिहड़े थानू बार बार देह दियां बंधना की तरफ खिंच के लै आउंदे हैं। किहड़ा कम सानू मालिक नाल मिलाउंदा है, मालिक की भगती मिलाउंदी है, मालिक का प्यार मिलाउंदा है, बाकी तो लैने देने दा हिसाब है, गर्जा दा प्यार है। असी अगर हमेशा इंद्रियां दे भोगां विशियां वकारां शराबां कबाबां कौमां मजहबां मुल्कां दे ही झगड़ियां विच फसे रहना है, ये सारे धंधे सारे जिहड़े बीज बीजण लगे हुए हाँ कम काज इहो जिहे करन लगे हुए हाँ, ये फिर सानू बार बार देह दियां बंधनां विच खिच के लै आउणगे। इसे वास्ते गुरु साहब ने खबरदार कीता सी विष्टा के कीड़े विष्टा कमाएं विष्टा माहे पचावणिया, असी दुनिया के जीव गंदगी दे कीड़े हाँ, गंदगी विच ही पैदा हुंदे हाँ, गंदगी विच ही रहिंदे हाँ, गंदगी नाल प्यार है, गंदगी ही खांदे हाँ, गंदगी विच ही मर जाने हाँ, फिर असि गंदगी विच पैदा हो जाने हाँ। रचना जो कुछ भी अखां नाल देखते हाँ गंदगी है, इन्हें नाश हो जाना है, इन्हें फना हो जाना है, इसे नाल ही प्यार पाई बैठे हाँ। कदे ये साढ़े माता पिता बन के आ जाते हैं, कदे असी इन्हां दे भैण भाई माता पिता बन के आ जाने हाँ, सो इस गंदगी चो असी नहीं निकलते। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी कहिंदे हन तुसी ओ काम करो जिस दे नाल थोड़े कर्मां दा सिलसिला खत्म हो जावे, उन्हां धंधियां उन्हां कम्मां काजां विच ना सारी उम्र फसे रहो, जिहड़े कम काज थानू बार बार देह दियां बंधनां विच खिच के लियाओ। इसे वास्ते गुरु साहब कहिंदे तंदे तावत जग बांधिया ना बूझे विचार, जम्मण मरण वसारिया मनमुख मुगद गवा। असी दुनिया के जीव कितने मनमुख हाँ मुगद हाँ गवार हाँ कि जिस मकसद और परपज वास्ते मालिक ने भेजा है कदे पुले पटके भी उसके मतलब सोचण की कोशिश नहीं करते, पेट के तंदियां वास्ते दौड़े फिरते हाँ, दुनिया के शक्लां और पदार्थों वास्ते पटकते और तड़पते फिरते हाँ, अपने आप नूं भी धोखा दे रहे हाँ, दुनिया नूं भी धोखा दे रहे हाँ, अपना घर लुटिया जा रहा है, लोगों की घर की चौकीदारी करते हाँ, अपना बोझा उठा नहीं हुंदा, प्राय गधे बने बैठे हाँ, अपने आप नूं भी धोखा दिंदे हाँ, दुनिया नूं भी धोखा दिंदे हाँ। इस वास्ते आप खबरदार करते हैं मते थोड़े मन में ख्याल होवे कि थानू मौत तो बाद फिर इंसान का जामा मिल जाएगा, फिर पता मिले मिले ना मिले ना मिले, या किसी ऐसे जगह जन्म हो जाए जिथे जाके पुले पटके भी थोड़ा ख्याल मालिक की भगती तरफ नहीं जा सकता। इस वास्ते इस मौके तो हर एक नू फायदा उठाना चाहिए है। स्वामी जी कहते हैं इस घर से उस घर जाओ, जितना चिर मालिक ने थानू देह विच बैठन का मौका दिता है थानू उस घर के असली घर की खोज कर लेनी चाहिए है, क्योंकि ये जड़ा घर है तो किराए का मकान है, पराया मकान है, 50-60 साल वास्ते मिलया है, 70-80 साल वास्ते मिलया है, जितने सांस मालिक ने बख्शे हैं भुगतन तो बाद हर एक नू इत्थे छड़ के जाना पैना है, अग्नि दे सपुरद करके छड़ जावांगे, मिट्टी अंदर दबा के छड़ जावांगे, सो उस वक्त तो पहला पहला असली घर दी खोज कर लेनी चाहिए है, जिथों जाके सानू कदे वापस उस घर विच ना आना पवे। इस वास्ते स्वामी जी कहिंदे सारी उम्र पराया धंधियां विच ना फसे रहो कि कुछ अपना भी बनाउण दी कोशिश करो,
काम अपना करो जाई पराए काम नहीं फसना, नाम गुर का संभाले चल यही है दाम गठबंधना।
देह विच बैठ के जो कुछ भी सी इकट्ठा करते हाँ, कितनी तन दौलत इकट्ठी कर लईए, कितनी जायदादा इकट्ठिया कर लईए, कितना बैंक बैलेंस ज़्यादा बना लईए, कितनी दुनिया की मान वडियाई इकट्ठी कर लईए, स्वामी जी कहिंदे किसी चीज़ ने थोड़े नाल नहीं जाना, सब कुछ तुसीं इत्थे ही छड के चले जाना है। जिहड़ी चीज़ थोड़े नाल जांदी है वह केवल शब्द की कमाई है, वह केवल नाम की कमाई है। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी बिन नामे को संग न साथी मुक्ते नाम ते आवणिया। इस चीज़ को अच्छी तरह मन विच बिठा लो कि नाम की कमाई तो बगैर ना तो तुसी कदे मुक्ति हासिल कर सकते हो, ना किसी चीज़ को इकट्ठा करके अपने नाल ले जा सकते हो। पंजवीं पातशाही कहिंदे संत जनों मिल पाइयो सच्चा नाम संभाल तोसा बंधु जीव का इत्थे उत्थे ना। गुरमुखां कोल जा के शब्द की कमाई करो, नाम की कमाई करो, इहो ही थोड़ा असली तोसा है। इत्थे भी तुसी हासिल करके जिंदगी दे 10 दिन सुख और शांति दे कट सकते हो और उस चीज़ नूं पल्ले बन के तुसी साथ ले जा सकते हो। बाकी जो मर्जी इकट्ठा कर लवो, इत्थे लिया सी इत्थे ही छड के चले जाना है। जे ये चीज़ां किसी दा साथ जांदियां साडे हिस्से विच क्यों आउणियां सी, लोकां ने पहला ही बुक करके भेज छड्डणियां सी। इस वास्ते महात्मा कहिंदे जिहड़ी चीज़ ने साडा साथ देना है वह तो सिर्फ नाम की कमाई है। कल गुरु नानक साहब के शब्द में आया सी इत्थे अगे नाम सिखाई, वो नाम की कमाई है, इत्थे भी साडे नाल है, उत्थे भी साडे नाल है, इत्थे भी हासिल करके सुख और शांति हासिल करते हाँ, उत्थे भी इन्हें सानू मालक की दरगाह विच लैके जाना है। सो जिहड़ी चीज़ साडे नाल मालक की दरगाह विच जाएगी केवल शब्द और नाम की कमाई है, बाकी तो सब कुछ असीं इत्थे ही छड के चले जाना है। इस वास्ते आप समझाते हैं कि गुरमुखां कोल जा के सानू शब्द की कमाई करनी चाहिए है, नाम की कमाई करनी चाहिए है। तुसी किसे महात्मा की बाणी पढ़ के देखो, हर एक महात्मा दे शब्द पत्रा पत्रा तुक तुक उस नाम की महिमा करता है। किहड़े नाम की महिमा करता है? जिहड़ा अखां नाल देखिया नहीं जा सकता, जबान नाल बयान नहीं किया जा सकता, कन्नां नाल सुनिया नहीं जा सकता, जिसनों हजूर महाराज जी अनरिटन लॉ अनस्पोकन लैंग्वेज कह के याद करिया करते सी, जिसनों क्राइस्ट ने कहा हैविंग आईज जी सी नॉट, हैविंग ईयर जी हीयर नॉट। अखां होने के बावजूद तुसी देख नहीं सकते, कन्न होने के बावजूद तुसी सुन नहीं सकते, उस नाम की गुरु घर ने महिमा की है। अखा बाजों वेखना बिन कन्ना सुनना, पैर बाजों चलना बिन हत्था करना, जीबे बाजों बोलना यो जीवत मरना, नानक हुक्म पछाण के त्यों खसमे मिलना। तुसी उस शब्द या नाम नू पकड़ के मालक नू पहचानोगे जिन्हों थोड़ियाँ कदे अखा नहीं देख सकदियाँ, थोड़ी कदे जबान बयान नहीं कर सकते, थोड़े कन्न कदे सुन नहीं सकते, थोड़े हाथ लैके पहुँच नहीं सकते, पैर लैके तुसी उत्थे जा नहीं सकते। वो चीज़ लिखन पढ़न बोलन नाल तल्लक नहीं रखती, उसनों तुसी जींदे जी मर के हासिल कर सकते हो। जींदे जी मरण का मतलब है कि नवां दुआरियां चो ख्याल समेट के अखा पिछे लिया के हासिल करना है। इनू जीवत मरना आम महात्मा ने केवल इस वास्ते किया है कि जदों भी किसी नूं मौत आउंदी है पहला उरे पैर ठंडे होने शुरू हो जाते हैं, फिर साडा इत्थों ख्याल उपर की तरफ आउंदा है, हेठला हिस्सा ठंडा होना शुरू हो जाता है। जदों आत्मा सिमट के अखां तिकर आ जाती है, शरीर नूं छड के एक तरफ तुर हो जाती है। सो गुरु साहब कहिंदे अगे समझाउणगे सिमरन और ध्यान दे जरिए, इसे प्रोसैस दे जरिए जींदे जी मरो। अगर तुसी शब्द दे नाल ख्याल जोड़ना चाहते हो, नाम के नाल ख्याल जोड़ना चाहते हो, सो महात्मा उस शब्द की महिमा करते हैं, उस नाम की महिमा करते हैं जिहड़ा हर एक दे अखां पिछे तुनकारा देन लगा होया है। इस वास्ते गुरु नानक साहब कहिंदे नौ दर ठाके तावत रहाए, दसवें निज कर वासा पाए, उत्थे अनहद शब्द वजे दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया। जदों तुसी नवां दुवारियां चो ख्याल कढ के अखां पिछे इकट्ठा करोगे, तुसी अपने घर के दरवाजे ते पहुँच जावोगे। उस घर के दरवाजे की केवल एक निशानी है जिहड़ी हर एक ने अंदरों याद रखनी है कि उस दरवाजे ते अनहद शब्द तुनकारा देन लगा होया है। सो जितना चिर घर के दरवाजे ते आके उस अनहद शब्द दियां तुनकार तुना नूं अंदरों नहीं सुणांगे उतना अरसा असीं रूहानी सफ़र किस तरह तय कर सकते हाँ। वो तुनकार तुना चोरां अंदर भी है, ठग्गां अंदर भी है, साधु संतां महात्मा अंदर भी है। इत्थे किसी कौम या मजहब और मुल्क का कदे सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। कोई हिंदू होके अंदर जाए, सिख ईसाई होके अंदर जाए, जो खुशकिस्मत भागां वाला अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करेगा वो अपने अंदरों उस शब्द की आवाज़ को सुनना शुरू कर देगा, उस शब्द की ज्योति या शब्द के प्रकाश को देखना शुरू कर देगा। इसे वास्ते गुरु साहब ने कहा सी कासठ में जो है बसंतर मत संजम काट कढ़ीजे, राम नाम जो है जोत सुभाई तत गुरमत काट लीजे। जिस तरह लकड़ी के अंदर अग्नि होंदी है ना किसी नूं नज़र आउंदी है ना उस अग्नि तो कोई फायदा उठा सकता है। अगर असी लकड़ी नूं जुगती दे जरिए लकड़ी ते लकड़ी रगड़नी शुरू कर दईए तुसी उहदे चों अग्नि भी पैदा कर सकते हो, अग्नि नूं देख भी सकते हो, अग्नि तो फायदा भी उठा सकते हो। इसे तरह गुरु नानक साहब कहिंदे हो राम नाम की जोत भी हर एक दे अखां पिछे जगदी है, लेकिन गुरमुखां दी मत दे जरिए जिसम और शरीर दे अंदर वड़ के रिसर्च करो वो की मत दिंदे हन, नौ दरवाजे नवें दर फीके रस अमृत दसवीं च बीजे। वो समझाते हैं कि अखां तो नीचे तक केवल इंद्रियां दे भोग हैं, विषयां वकारां शराबां कबाबां दीआं लस्तां हैं। अगर तुसी रस दे भरे हुए अमृत नूं पीना है वो तो तुहाडे अखां दे पिछे बरसन लगा होया है। सो जितना चिर कोई उस नुक्ते और पॉइंट ते ही ख्याल इकट्ठा नहीं करता जिथे दाता दात दे रहा है, बख्शिश कर रहा है, अमृत रूपी नाम पीण लगा होया है, तुसी उस अमृत नूं किस तरह पी सकोगे। सो वो प्रकाश इत्थे अखां पिछे है, वो शब्द अखां पिछे तुणकारा देन लगा होया है, सानू अखां पिछों पर्दा ला के बाहर कढ़िया होया है। इस वास्ते असी अज्ञानता दे अंधेरे अंदर बैठे हुए हाँ। इस वास्ते थे गुरु साहब वो सच्चे शब्द की महिमा करते हैं, सच्चे नाम की महिमा करते हैं। ये जिहड़े साडे लफज हैं ये वर्णात्मक शब्द हैं, लिखण विच आउंदे हैं, पढ़न विच आउंदे हैं, बोलण विच आउंदे हैं। आपो अपने प्यार विच आ के लोगों ने हज़ार हाँ अनेकां ही परमात्मा के नाम रखे हुए हैं, हज़ारां अनेकां महात्मा दुनिया विच आए हैं, हज़ारां अनेकां लफ्ज़ां दे ज़रिए उन्होंने मालक नूं याद किया है। हाले हज़ारां अनेकां महात्मा ने दुनिया विच आउणा है, हज़ारां अनेकां लफ्ज़ां नाल उन्होंने मालक नूं याद करना है। पिछले परमात्मा दे नाम रखे हुए भुलदे जा रहे हाँ, अगे प्यार विच आ के मालक दे नाम आपां रखदे चले जा रहे हाँ। सो ये जिहड़े लफ्ज़ हन साडे मीनस हन वो साडा एंड और ऑब्जेक्ट है। माता अपने बच्चे नूं देखो प्यार विच आ के कई लफ्ज़ां नाल याद करती है, लेकिन माता का जिहड़ा रिश्ता बच्चे नाल है कोई लफ्ज़ां का रिश्ता नहीं है, भगती का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। लफ्ज़ तो माँ के प्यार नूं ज़ाहर करते हैं। सो आत्मा और परमात्मा का जिहड़ा रिश्ता है कोई लफ्ज़ां का नहीं है, रिश्ता भगती का है, रिश्ता प्यार का है। लफ्ज़ तो प्यार नूं ज़ाहर करते हैं, असीं किसी लफ्ज़ नाल मालक नूं याद कर सकते हाँ। इस वास्ते महात्मा सच्चे नाम की हमेशा महिमा करते हैं। ग्रंथ पोथियां उस नाम की महिमा के नाल भरे हुए हैं, ग्रंथां पोथियां दे पढ़न दे नाल उस नाम की कमाई करन दा तरीका और साधन पता लग जाता है। लेकिन उन्होंने मैं कल अर्ज़ की सी पढ़न दे अंदर मुक्ति नहीं है, जो कुछ पढ़ते हैं उसके उत्ते अमल करन दे उत्ते मुक्ति है। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी महाराज प्यार नाल समझाउंदे हन गुरमुखां कोल जा के उस शब्द दे नाल ख्याल जोड़ना है, उस नाम दे नाल ख्याल जोड़ना है। इसे वास्ते तीसरी पातशाही ने कहा सी संतो गुरमुख पूरा पाई नामो पूज कराई। जदों तू किसी मालिक दे भगत और प्यारे को जावेगा वो तैनू नाम की कमाई करन दा तरीका दसेगा, फिर तू परमात्मा की भगती कर सकेगा। सो जदों भी भगती कर सकते हाँ केवल शब्द की कमाई करके कर सकते हाँ, नाम की कमाई करके कर सकते हाँ। इसे वास्ते स्वामी जी कहिंदे हन गुर कहें खोल कर पाई लग शब्द राहत जाई, बिन शब्द अपाओ ना दूजा काया का छुटे ना कूजा। स्वामी जी कहिंदे शब्द और नाम की कमाई तो बगैर कोई उपाओ नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि तुसी दे दियां बंधना तो छुटकारा हासिल कर सको। यो गुरु साहब ने कहा सी शब्द मरे सो मर रहे, फिर मरे ना दूजी वाह। अगर तुसी उठते बैठते चलते फिरते शब्द के नाल ख्याल जोड़ लवोगे तुसी हमेशा वास्ते मर जावोगे, थोनू बार बार मरण जमण की लोड़ नहीं पैंदी। गुरु साहब कहिंदे शब्द मरे सोई जन पूरा, सतगुर आख सुनाए सूरा। जदों तुसी शब्द के अंदर जज़ब हो जावोगे, लवलीन हो जावोगे, अपनी हस्ती नेस तो नबूद कर देवोगे, तुसी पूर्ण हो जावोगे, पूर्ण परमात्मा दे मिलन दे काबल हो जावोगे। साडे सतगुरां ने सानू इहो ही मालक दे भगती करन दा तरीका समझाया है। इस वास्ते महात्मा प्यार नाल समझाउंदे हन, जो कुछ मिलना है ओत शब्द की कमाई तो मिलना है, नाम की कमाई तो मिलना है। गुरमुखा ने तरीका दसना है, साधन समझाना है, कोल के साडे अंदर कुछ नहीं पाउणा, सब कुछ मालिक ने साडे अंदर साडी ही खातर रख्या होया है।
नाम गुर का संभाले चल, यही है दाम गंठ बंदना। जगत का रंग सब मैला, तुला ले
प्यार नाल समझाउंदे हन। सब दुनिया दे रंग कच्चे हन, पुत्रां तियां दे प्यार दे, कौमां मज़हबां मुल्कां दे झगड़ियां दे, शराबां कबाबां दीआं लस्तां दे, ये जो कुछ भी है इन्हां दी कोई असलियत नहीं है, ये एवें धोखा ही धोखा है, ये एवें साडे ख्याल नूं खराब करन वालियां गल्लां हन। सो गुरमुखां कोल जा के स्वामी जी कहिंदे इधरों मन नूं कढो, बथेरी उम्र तुसीं आशीषित करके देख लई है, हुण मालक दी भगती करनी चाहीदी है, मालक दी खोज करनी चाहीदी है।
जगत का रंग सब मैला, तुलाले मान ये कहना, भोग संसार कोए दिन के, सहज में त्याग ते चलना।
जे अज तक सानू इंद्रियां दे भोगां चो सुख और शांति हमेशा वास्ते प्राप्त नहीं हुई, हुण असी की सोची बैठे हाँ, उम्मीद लई बैठे हाँ कि इन्हां भोगां चो सुख हासिल कर सकांगे, शांति प्राप्त कर सकांगे। दुख ही दुख हन, मुसीबतां ही मुसीबतां हन, बीमारियां ही बीमारियां हन। इस वास्ते कहिंदे इन्हां चो मन नूं कढ़णा चाहीदा है, ख्याल नूं कढ़णा चाहीदा है। किस तरह कढ़णा है आप अगे तरीका समझाउंदे हन।
भोग संसार कोए दिन के, सहज में त्याग ते चलना। सरन सतगुर गहो दृढ़ कर, करो यह काज पिल रहना।
अगर तुसी पुत्रां तियां चों, कौमां मज़हबां मुल्कां दे झगड़ियां चों, शराबां कबाबां दीआं लस्तां चों ख्याल नूं कढ़णा चाहुंदे हो, तुहानूं की करना चाहीदा है? गुरमुखां दी शरण हासिल करनी चाहीदी है, कि उहनां दी संगत करनी चाहीदी है, उहनां दी सोभत करनी चाहीदी है। साडा मन संगत और सोभत दा बड़ी जल्दी असर लैंदा है। तुसी देख लो, शराबियां कोल बैठिए शराब पीण दी आदत पैदा हो जाती है, जुआरियां कोल जाइए जुआ खेलण दी आदत पैदा हो जाएगी। इसे तरह मालक दे भगतां और मालक दे प्यारियां कोल जाते हाँ, उन्हां नूं देख के साडे अंदर बदो बदी मालक दे मिलन दा शौक और प्यार पैदा हो जाता है। गुरु साहब ने कहा सी ਕਿ ਤੰਤ ਸੂਤ ਕੁਛ ਨਿਕਸੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਲਾਕੀਜੇ, ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਸੂਤ 'ਚੋਂ ਕਦੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਬੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਨਮੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਜੀਓ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮੇਲ ਹਰ ਧਿਆਈਏ। ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਸੋਭਤ ਦੇ, ਸਤਸੰਗ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਜਾਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਸ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਝੀ ਔਰ ਸਮਝ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਤਮਾ ਸਤਸੰਗ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਕੌਮ ਦੂਸਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਹਬ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀਆਂ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਹੀ ਮਹਿਮਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਸੰਗ ਤਾਕੋ ਆਖੀਏ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾਮ ਵਿਖਾਣੀਏ। ਸਤਸੰਗ ਤਾਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ, ਡੰਡੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਫਾਇਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੁਛ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿਨਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿੰਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਲਿਵ ਲਾਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਸੰਕਲਪ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸਾਧਨਾ 'ਚ ਉਸਦੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਤਰਫ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ? ਪੰਜ ਜਣਾ ਮਿਲ ਮੰਗਲ ਗਾਇਆ, ਹਰ ਨਾਨਕ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਭਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਲ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਔਰ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਵੀ ਭਿੰਨ ਔਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਅੰਧਾ ਆਦਮੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਘੁਲਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸੂਰੀ ਦੀ ਤਪਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭੈੜੇ ਖੋਟੇ ਪਾਪਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ ਕਰਨੀ ਹੈ।
ਸਰਨ ਸਤ ਗੁਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ, ਕਰੋ ਜਹ ਕਾਜ ਪਿਲ ਰਹਿਣਾ, ਸੁਰਤ ਮਨ ਥਾਮ ਅਬ ਘਟ ਮੈਂ, ਪਕੜ ਧੁਨ ਧਿਆਨ ਤਾਰ ਗਗਨਾ।
ਹੁਣ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਭੋਗਾਂ 'ਚੋਂ, ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ 'ਚੋਂ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਤਲਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੀ ਚੋਟੀ ਤਿੱਕਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਹਨ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤਿੱਕਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਜਿਸਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹ ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਨੇਤਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਿਵ ਚਕਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰ ਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨੁਕਤਾ ਸਫੈਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਉਤਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਦੁਬਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। किस तरह फैलता है। इत्थे बैठे कदे बाल बच्चियां दा ख्याल आउंदा है, कदे घर दे कारोबार दा ख्याल आउंदा है, कदे दुकान दे गाहकां दा ख्याल आउंदा है। मन कदे किसे दा निचला नहीं बैठदा, किसे ना किसे चीज़ दे सोच और विचार विच लगा रहिंदा है। ये जिहड़ा सारा दिन साडे मन नूं सोच और विचार करन दी आदत पई होई है, इहनूं महात्मा सिमरन करना कहिंदे हन। हुण सिमरन करन दी कुदरती हर एक नूं आदत पैदा हो चुकी है। कितनियां अंधेरियां कोठड़ियां दे अंदर तुसीं क्यों ना बंद अपने आप नूं कर लवो, तुसीं उत्थे नहीं होवोगे, तुहाडा ख्याल सारी दुनिया दे अंदर फैलिया होया होवेगा। और जिस दा भी सिमरन करदे हाँ उहदी शक्ल भी अखां अगे आ के खड़ी हो जाती है। अगर पुत्रां तियां दा सिमरन करदे हाँ पुत्र तियां अखां अगे आ जाणगे। अगर घर के कारोबार का सिमरन करते हाँ घर के कारोबार अखा अगे आ जाएंगे, उसनों महात्मा ध्यान धरना कहिंदे हन। जिसका भी कोई सिमरन करता है उस दा वह ध्यान धरना शुरू कर देता है। जिन्हों का सिमरन करते हाँ ध्यान धरते हाँ उन्होंने साडा मोह पैदा हो जाता है, प्यार पैदा हो जाता है। इतना उन्हां शकलां और पदार्थां नाल अपना मोह और प्यार पैदा हो जाता है कि रात नूं हुण सुपने भी सानूं उन्हां दे ही आउंदे हन। मौत दे वक्त उन्हां दीआं ही शकलां सिनेमे दे स्क्रीन दी तरह अखां अगे आ जांदियां हन। जहाँ आसा तहाँ बासा, जिधर आखिरी वक्त ख्याल हुंदा है असीं उसे दुनिया दे रौ विच बह जांदे हाँ। किहड़ी चीज़ देह दे बंधनां विच लियाई, दुनिया दा मोह और प्यार लियाया, किसने पैदा कीता? सिमरन और ध्यान ने पैदा कीता। किन्ना चीज़ां दे सिमरन और ध्यान ने जिन्हां ने नाश हो जाना है, जिन्हां ने फना हो जाना है। जो कुछ भी दुनिया अंदर देखते हाँ अखां नाल सब ने नाश हो जाना है, सब ने फना हो जाना है। सो महात्मा कहिंदे सिमरन और ध्यान की तो कुदरती हर एक नूं आदत पैदा हो चुकी है। इस वास्ते मन की आदत तो फायदा उठाओ। सिमरन नूं सिमरन कटेगा, ध्यान नूं ध्यान कटेगा। लेकिन उस चीज़ का सिमरन करो, उस चीज़ का ध्यान करो जिन्हें कदे नाश नहीं होना, जिन्हें कदे फना नहीं होना। वो कौन है? सिर्फ एक परमात्मा और परमेश्वर है। सो महात्मा सानू उस मालिक दे नाम का सिमरन करन दा तरीका दसदे हन, जिस दे जरिए असी फैले हुए ख्याल नूं फिर वापस ट्रेस करके अखां पिछे इकट्ठा करदे हैं। फिर साडा ख्याल टिकदा नहीं, इहनूं हमेशा तो नीचे दौड़न नीचे आउण दी आदत पई होई है। जितना चिर किसी ना किसी के सरूप का ध्यान नहीं देवांगे इहनूं टिकण दी आदत पैदा नहीं हुंदी। परमात्मा दे सरूप का तो सानू पता नहीं है, इस वास्ते होर किहड़े स्वरूप का ध्यान देना है? असीं सतगुरां दे स्वरूप का ध्यान देना है, क्योंकि उन्हां दा जिहड़ा असली स्वरूप हुंदा है वह शब्द हुंदा है, वह नाम हुंदा है। और शब्द और नाम दे विचों ही आउंदे हन, शब्द और नाम का ही प्रचार करते हैं, शब्द और नाम दे विच जाके समा जाते हैं। असी भी उस शब्द और नाम दे विच जाके समाउणा चाहते हाँ। इस वास्ते जिन्हां सतगुरां ने सानूं शब्द दे नाल जोड़िया है असी उन्हां दे स्वरूप का ध्यान करना है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, गुर की मूर्त मन में ध्यान, गुरमुखां दे तसव्वुर नूं अपने मन विच रखना है। स्वामी जी कहिंदे गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं छुटना। सो उन्हां दे स्वरूप का ध्यान करके इत्थे ख्याल नूं अखां पिछे टिकण दी आदत पैदा हो जाती है। जिस वक्त ख्याल टिकना शुरू हो जाता है अपने आप ही मिकना तो इसी तरह शब्द नूं अंदरों पकड़ लेंदा है। जैसे जैसे शब्द की लज्जत अंदर आउंदी जाती है वैसे वैसे दुनिया चो मोह और प्यार साडा निकलता जाता है, क्योंकि लज्जत दा आशक है। जितना चिर इस नूं दुनिया दे मोह और प्यार तो उच्ची और सुची लज्जत नहीं मिलती, है दुनिया दा मोह और प्यार कदे छड्डण नूं तैयार नहीं हुंदा। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, गुर का शब्द महारस मीठा, बिन चाके साधना है। जिस शब्द के नाल गुरमुख साडे ख्याल नूं जोड़दे हन उसनू महारस मिठा कहिंदे हन, कि जिहड़ा कदे जबान नाल बयान ही नहीं कीता जा सकता, जिहड़ा चखण नाल तलक है, गल्लां बातां दा मजबून नहीं है। उस लज्जत नूं हासिल करके मन आटोमैटिकली दुनिया के इंद्रियां के भोगां विशियां वकारां दीआं रस्ता छड्ड दिंदा है। जिसनों हीरे जवाहरात मिलणगे क्यों कौड़ियां मगर दर बदर ठोकरा खाते हैं, लड़कियां गुड्डियां पटोलियां नाल उतना खेल खेलदियां हैं जितना चिर उन्हां दी शादी नहीं हुंदी। सो उस शब्द और नाम की अटैचमेंट सानूं हमेशा वास्ते दुनिया की तरफों डिटैच करना शुरू कर दिंदी है। सो इस वास्ते स्वामी जी कहिंदे सिमरन और ध्यान के जरिए तुसीं शब्द नूं पकड़ो। अगर तुसीं इंद्रियां दे भोगां विशियां वकारां शराबां कबाबां चों अपना ख्याल करना चाहुंदे हो,
सुरत मन थाम अब घट में पकड़ तो न ध्यान तारे गगना हसे तुम जाल में पारी बिना इस जगत नहीं खुलना।
स्वामी जी कहते असी दुनिया के जीव बड़ी बुरी तरह काल के जाल में फसे हुए हाँ, जो पिछे कर्म किए हैं उन्होंने हुण नतीजा रोपट के भुगतते हाँ, वैसे ही पैड़े खोटे पाप और कर्म करी जाते हाँ, पुले बैठे हाँ, फिर उन्होंने नतीजा भुगतन वास्ते इतने ही आना पवेगा। इस शब्द और नाम की कमाई तो बगैर कहते कोई जुगत नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि तुम देह दिया बंधना तो छुटकारा हासिल कर सको। वो ही चीज़ सानू मन और माया के दायरे तो पार ले जा सक है जिड़ी मन और माया के दायरे तो पौरी होंगी। वह शब्द सचखंड तो उठता है जो असी अखा पिछे ख्याल इकट्ठा करके उसके नाल जोड़ांगे सानू भी वह खिंच के शब्द के नाल जोड़ देता है, सचखंड लै जाता है। इस वास्ते गुरु साहब ने कहा सी गुर प्रसादी तिरकुटी छोटे चौथे पद लवलाई। गुर प्रसादी जिस वक्त गुरमुखां दे दसे हुए उपदेश उत्ते चल के शब्द की कमाई करते हाँ, तिरकुटी काल के दायरे तो छुटकारा हो जाता है, चौथा पद असी सचखंड वापस पहुँच जाते हाँ। सो जिहड़ी चीज़ सानू काल के दायरे तो निकाल के वापस मालिक नाल मिलाउंदी है वह केवल शब्द की कमाई है। इस वास्ते पहली पातशाही ने कहा सी बाबा जग फाता महाजाल, गुर प्रसादी उभरे सच्चा नाम संभाल। बड़ी बुरी तरह असी दुनिया के जीव काल के जाल में फसे हुए हैं, इतों इको निकल का मालिक ने दरवाज़ा रखा है। गुरमुखा को जाके सच्चे शब्द की कमाई करो, सच्चे नाम की कमाई करो। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी बिन नाम में होर पूज ना होई परम पुली लोकाई। उस नाम की कमाई तो बगैर कोई मालिक की भगती और पूजा नहीं है, कोई तरीका नहीं है कि तुसी मालिक नाल वसाल कर सको। इस वास्ते इत्थे स्वामी जी कहिंदे हन कि जिहड़े असी काल के जाल विच फसे हुए हाँ, इत्थों निकल का केवल तरीका ही इको है, साधन ही इको है कि तुसी उस शब्द के नाल ख्याल जोड़ो, उस नाम के नाल ख्याल जोड़ो।
फसे तुम जाल में पारी बिना इस जगत नहीं खुलना गुरु अब दया कर कहते मान यह बात चित धरना।
आप फरमाते हैं महात्मा नूं अपनी कोई गरज नहीं होंदी, उन्होंने कोई कौम नहीं बनानी, कोई मजहब नहीं बनाना, किसी मुल्क की हकूमत नहीं करनी, कोई जायदादा नहीं बनानिया, कोई रुपया पैसा इकट्ठा नहीं करना। वह सिर्फ साढ़े ते दया करके मेहर करके बख्शिश करके कि किस तरह बड़ी मुश्किलों नाल इन्होंने इंसान का जामा हासिल किया, किस तरह भंग दे पाड़े बेचारे खोण लगे हुए हैं, सानूं इत्थों निकलण का तरीका समझाते हैं, इत्थों निकलण का साधन समझा हैं। इस वास्ते आप फरमाते हैं वो तो साढ़े ते तरस खाते हैं, बख्शिश करते हैं। इस वास्ते आपने स्वामी गुरु नानक साहब ने गुर प्रसाद किया है, क्योंकि प्रसाद हमेशा खुशी नाल दिता जाता है। नाम दान किया है जिसकी कदे कोई कीमत नहीं ली जाती, दान की कोई कीमत नहीं लेंदा, प्रसाद की कदे कोई कीमत नहीं लेंदा। इस वास्ते स्वामी जी कहते महात्मा तो दया करके सानू इतों निकलने का तरीका दसते हैं, उन्होंने अपनी कोई गरज नहीं होंगी, वो दसां लोहां की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करते हैं। तुसी देख लो गुरु नानक साहब ने करतारपुर हथीं अपनी खेती की, अपनी परवरिश की, अपने बाल बच्चों की परवरिश की और सारी उम्र मुफ्त साध संगत की सेवा की। और संगत नूं की हदायत देंदे हन, गुर पीर सदाए मंगण जाए ताकि मूल ना लागू पाए, काल खाए कुछ हथों दे नानक राह पछाणे से। गुरु और पीर हो के जिहड़े सिखां सेवकां कोलों मंगदे फिरदे हन, उन्हां दे पैरां ते कदे मत्था ही नहीं टेकना। कैसे महात्मा की खोज करनी है जिहड़े खुद असनहां की कमाई करते हों और साध संगत की सेवा करते हों। कबीर साहब वाल देख लो, सारी उम्र कपड़ा बुन बुन के बेचारे वाले गुजारा किया। शाह बलख बखारा जैसे आप दे सेवक से जिहड़े महलां विच भी रख सकते सी। कबीर साहब कहिंदे, मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, पर मारत के कारने मोहे ना आवे लाज। संत महात्मा साडा साध संगत के अंदर पाँ परोपकार करा देन, अपने वास्ते कदे हथ नहीं फैलाउंदे। इसे वास्ते कहिंदे, शिष्य को ऐसा चाहिए गुर को सरबस दे, गुर को ऐसा चाहिए शिष्य का कछूंदा ले। सेवक दा धर्म है जो कुछ है गुरमुखां दा समझ के इस्तेमाल करे, लेकिन गुरमुखां दा भी कोई असूल है कि सेवक दी सूई तक नहीं लैनी, लैंदे हन गुरमुख नहीं हन। रविदास महात्मा देख लो, मीराबाई भी आपकी सेवक सी, राजा पीपा छत्री राजपूत भी आपका सेवक सी, लेकिन सारी उम्र जुतियां बना बना के गुजारा किया। बाबा नामदेव की जिंदगी पढ़ के देखो, कपड़े ठाक ठाक के गुजारा किया। दादू साहब देख लो, दुनिया का काम किया। पलटू साहब देख लो, दुकानदारी का काम किया। और जो कुछ डेरे महात्मा करते रहे हैं थोड़िया अखा अगे हैं। सो महात्मा जिंदगी की मिसाल बन के सानू दसते हैं किस तरह दहा नहां की कमाई करते हुए साध संगत की सेवा करनी है। इस वास्ते महात्मा नू अपनी कोई गर्ज नहीं होंगी।
गुरु अब दया कर कहते, मान यह बात चित तरना, पाठक में क्यों उम्र खोते, कहीं न है ठीक तुम लगना।
हम सानू खबरदार करते हैं कि बाहर मुखी हो के क्यों पटकते फिरते हो, कुछ इन्हों चीज़ा चो नहीं मिलना। कितने महात्मा के खड़ावों से मत्थे रगड़ लो, समाधा से मत्थे रगड़ लो, तस्वीर की पूजा कर लो, बुतों की पूजा कर लो, सरोवरों में इनान कर लो, तीर्थ यात्रा कर लो, कन्न पड़वा लो, जटा रख लो, जिसम से भभूत लगा लो, पुन दान कर लो, जप तप कर लो, सरोवरों में इनान कर लो, जो मर्जी कर लो। जो कुछ मिलना है वह केवल शब्द की कमाई चो मिलना है, जो कुछ मिलना है वह नाम की कमाई चो मिलना है। इसे वास्ते स्वामी जी ने कहा सी, सुरत शब्द कमाई करना जतन दूर और सब तरना। सिर्फ सुरत शब्द का अभ्यास आपने क्या करो, बाकी कोई तरीका नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है एवें अपने वक्त को ख़राब करन दी। यो गुरु नानक साहब ने समझाया सी, पूजा करे सब लोग संतो मन मुख थाए न पाई। भगती तो सारे दुनिया के जीव आपो अपनी अकल के मुताबिक मालिक की करते हैं, क्योंकि आत्मा की कशिश जरूर अपने असल की तरफ जोर मारती है। उसके अधीन हो के सारे आप परमात्मा नू मिलन वास्ते व्याकुल होए बैठे हाँ। लेकिन गुरु साहब कहिंदे, असी मन दे मगल ला के मालिक नू भगत मालिक नू टूणदे हाँ। मन बाहर मुखी कर दिंदा है, कर्म कांड की तरफ खिंच के लै जाता है। इस वास्ते आप कहिंदे, ये पूजा थाए ना पाई। ये जिहड़ा मन दे मगर ला के तुसी भगती करते हो, ये मालिक की भगती नहीं है। इस भगती ने कदे थोनू थोड़े टिकाने ते नहीं पहुँचाउणा। शब्द मरे मन नरबल संतो, ये पूजा थाए पाई। जदों तुसी शब्द की कमाई करके, नाम की कमाई करके मन को निर्मल कर लवोगे, प्योर कर लवोगे, पवित्र कर लवोगे, ये असली मालिक की भगती है। इसे भगती ने थोनू थोड़े टिकाने ते पहुँचाउणा है। सो जिहड़ी भगती परमात्मा नू मंजूर है, जिहड़ी भगती ने सानू साडे टिकाने ते पहुँचाउणा है, वह सिर्फ शब्द की कमाई है। इसे वास्ते गुरु नानक साहब ने कहा सी, नाम विसार चले अनमार्ग अंतकाल पछताई है। नाम की कमाई करन दा तरीका छड़ के जिहड़े भी कोई रस्ते ते चलन की कोशिश करता है, अखीर उन्हें मौत दे वेले पछताउणा पवेगा, मैं तो एवें कीमती वक्त तो जाया कर बैठा। इस वास्ते स्वामी जी खबरदार करते हैं, क्यों एवें बाहर मुखी साधना कर्म कांड विच फस के भटकते फिरते हो, तड़फते फिरते हो। इन गल्लां जो कुछ नहीं मिलना, जो कुछ मिलना है सुरत शब्द दे व्यास तो मिलना है, नाम दी तुबाई तो मिलना है।
पाठक में क्यों उम्र खोते, कहीं न है ठीक तुम लगना। बसो तुम आए नैनन में, सिमट कर एक जहां होना।
अगे
दुई जा दूर हो जावे दृष्टि जोत में तरना।
सब कुछ बयान करके थोड़ा जा अंदर दे सफर का जिक्र करते हैं कि साडा जड़ा घर का सफर रूहानी सफर है वह अखा के पिछों शुरू होना है क्योंकि यह साडा घर का दरवाज़ा है। अखा तो नीचे नीचे तो केवल इंद्रियां दे भोग हैं विशियां वकारा शराबा कबाबा दस्तां हैं। इस वास्ते कहिंदे जितना चिर थोड़ा ख्याल इतों उतर के बाहर की तरफ फैलिया होया है तुसी द्वैत अंदर फसे हुए हो। जदों तुसी सिमरन और ध्यान के जरिए अखा के पिछे ख्याल समेट के अखा पिछे इकट्ठा कर लवोगे तुसी एकता दे अंदर आ जावोगे। जिस वक्त तुसी एकता दे अंदर आ जावोगे उत्थे थानू एक जोत जगदी नज़र आउंदी है। और जिहड़ी चोरां अंदर भी है ठग्गां अंदर भी है साधु संतां महात्मा अंदर भी है उत्थे किसी कौम दा मजहब दा मुल्क दा कदे सवाल ही पैदा नहीं हुंदा। जो भी खुशकिस्मत भागां वाला अखा पिछे ख्याल इकट्ठा करेगा वह अपने अंदरों उस जोत दे दर्शन करने शुरू कर देंदा है। उस जोत दा कबीर साहब ने जिक्र किया सी दीवा बले अगम का बिन बाती बिनते। बगैर बत्ती और तेल तो वो जोत हर एक दे अखा पिछे जगदी है। आपां जितनियां जोतां जगाउंदे हाँ तेल की भी लोड़ पैंदी है बत्ती की भी लोड़ पैंदी है। तेल खत्म हो जाए जोत बुझदी है बत्ती खत्म हो जाए जोत बुझदी है। लेकिन कबीर साहब कहिंदे जिहड़ी अगम की जोत है उहनूं अज तक कदे तेल और बत्ती की कदे लोड़ नहीं पई। इहो क्राइस्ट ने कहा सी इफ दाई आई बी सिंगल दाई होल बॉडी शैल बी फुल ऑफ लाइट। अगर तुसीं एक अख वाले बन जावो थोड़ा सारा जिसम नूर और प्रकाश के नाल भर जाएगा। क्या ये तुसी नौ द्वारे बंद करके अंदर थर्ड आई सिंगल आई खोलो थानू नूर ही नूर प्रकाश ही प्रकाश अपने अंदरों नज़र आना शुरू हो जाएगा। उस जोत का गुरु घर ने जिक्र किया है अंतर जोत निरंतर बाणी सच्चे साहिब से लिवलाई। हर एक दे अखा पिछे इत्थे जोत जगदी है। उस जोत दे अंदरों मिठी और सुरीली बाणी की आवाज़ उठन लगी हुई है। जिहड़ी उस जोत दे दर्शन करते हैं उस बाणी की आवाज़ को सुनते हैं उन्हों का दुनिया चो मोह और प्यार निकल जाता है। उन्हों का परमात्मा नाल मोह और प्यार पैदा हो जाता है। तो असी उस जोत के दर्शन करने हैं। पलटू साहब कहिंदे निकसे एक आवाज़ चिराग की ज्योति माही ज्ञान समाधि सुने और कोई सुनता नाही। जदों असी ज्ञान समाधि लगाने हाँ कि गुरमुखां दे कहण दे मुताबिक सिमरन और ध्यान दे जी अखां पिछे ख्याल इकट्ठा करते हाँ उत्थे सानू एक चिराग जलदा नज़र आता है जोत जगती नज़र आती है। और उस जोत के अंदरों एक सुरीली मिठी आवाज़ दिन रात तुनकारा देन लगी हुई है। असी उस आवाज़ के जरिए अंदरों घर का रुख कायम करना है उस प्रकाश के जरिए अंदरों रूहानी सफर तय करना है फिर मंजिल दर मंजिल अपने घर पहुँच जाना है। तुसी सोच के देखो जितने भी अपने धर्म स्थान हैं जिथे जाके अपनी अकल नाल मालक की भगती करते हाँ मालक की पूजा करते हाँ मंदिर लै लो बुद्धा का लै लो हिंदुआ का लै लो जैनिया का लै लो सब तो पहला बरामदे के अंदर घंटा लटक रहा है उन्होंने बजा के अंदर जाते हाँ अंदर जोत जगती नज़र आएगी दीवा लाट जगती नज़र आएगी। गुरुद्वारियां पर चले जाओ वह भी जोतां जगाते हैं घंटे और संख बजाते हैं। गिरजे के अंदर चले जाओ वह भी पहला घंटा बजाते हैं अंदर कैंडल जगाते हैं। मुसलमानों के मज़ारा पर चले जाओ मस्जिदों चले जाओ मौलवी उची उची नकारा बजाता है बांग दिंदा है रात में चिराग जगाते हैं। असी कदे सोचण की कोशिश नहीं करते कि हर एक जगह जोत क्यों जगाई जाती है हर एक जगह घंटे और संख वर्गी आवाज़ क्यों पैदा की जाती है। ये रिखियां मुनिया ने गुरु साहबान ने संतां महात्मा ने मालक के भगतों और प्यारिया ने सानू समझाया सी असली मंदिर है असली मस्जिद है असली गुरुद्वारा है असली गिरजा है। ये अंदर वड़ के रिसर्च करो खोज करो थानू घंटे और संख की आवाज़ भी सुनाई देवेगी थानू उस जोत के भी दर्शन होंगे। इस वास्ते गुरु नानक साहब ने शरीर नू हरी मंदिर कह के याद किया है। क्राइस्ट ने टेंपल ऑफ लिविंग गॉड कह के बयान किया है। ऋषियां मुनिया ने नर नारायणी दे कह के समझाया है। असी अंदर वड़न की कोशिश नहीं करते इट्टा पत्थरां दीआं चीज़ जगह बना लैंदे हाँ उत्थे घंटे भी खड़काने शुरू कर देंदे हाँ जोतां भी जगाउणियां ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਕਲ ਹੈ, ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੂਹਾਨੀ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਕੇ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ।
ਦੂਈ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜੋਤ ਮੈਂ ਧਰਨਾ ਸਿਆਮ ਤਜ ਸੇਤ ਕੋ ਗਹਿਣਾ ਸੁਰਤ ਕੋ ਤਾਨ ਧੁਨ ਸੁਣਨਾ ਬੰਕ ਕੇ ਦੁਆਰ ਧਸ ਬੈਠੋ ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਜਾਏ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੁਨ ਚੜ ਜਾਤ ਸੋ ਪਾਈ ਸੁਰਤ ਸੇ ਮਾਨ ਸਰਨਹਨਾ ਮਾ ਸੁਨ ਚੌਂਕ ਅੰਧਿਆਰਾ ਵਹਾਂ ਸੇ ਗੁਫਸਨਾ ਲੋਕ ਚਾਤੇ ਚਲੋ ਸਜ ਕੇ ਗਹੋ ਵਹ ਜਾਏ ਤੁਨ ਬੀਨਾ ਅਲਖ ਯਾਰ ਆਗਮ ਕੇ ਪਾਰਾ ਅਜਬ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਦਿਖਲਾਨਾ ਵੇਹੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਦੁਆ ਮਨ ਆਜ ਆਤਮਗਨਾ ਵੇਹੀ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਸੇ ਮਿਲਣਾ ਦੁਆ ਮਨ ਆਜ ਆਤਮਗਨਾ